एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो इतिहास को देखने का नजरिया शायद बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं इतिहास मतलब तारीखें, राजा, लड़ाइयां, बस यही सब है ना।
बिल्कुल।
पर क्या हो अगर इतिहास का असली खजाना कहीं और हो, हमारी अपनी निजी जिंदगियों में, हमारी भावनाओं में, रिश्तों के उतार चढ़ाव में।
हाँ, यही यही सवाल उठाती है थियोडोर ज़ेल्डन की किताब एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता का एक आत्मीय इतिहास। ये किताब पूछती है कि ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, प्यार, डर, अकेलापन, उम्मीदें, ये सब वक्त के साथ कैसे बदली हैं।
और आज की इस तेज रफ्तार, कभी कभी थोड़ी अकेली सी लगने वाली जिंदगी में इस समझ से हमें क्या मिल सकता है ना?
बिल्कुल। शायद ये समझ हमें जीने के, एक दूसरे से जुड़ने के कुछ नए रास्ते दिखा दें।
हाँ, क्योंकि अगर हमें ये पता चले कि हमारे जज्बात हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, तो शायद हम उन्हें बेहतर बना भी सकते हैं।
सही बात, एक उम्मीद सी जगती है।
तो चलिए इसी दिलचस्प सोच की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं ज़ेल्डन हमें कहाँ ले जाते हैं।
अच्छा, तो पहले ये जान लें कि ये थियोडोर ज़ेल्डन 1933 टू 2023 आखिर थे कौन। ये कोई टिपिकल इतिहासकार नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, बहुत सम्मानित ब्रिटिश इतिहासकार तो थे ही, लेकिन साथ में समाजशास्त्री और दार्शनिक भी। उनकी सोच काफी गहरी थी, इंसानी जज्बातों पर उनका बहुत फोकस था।
हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्हें शोहरत पहले फ्रांस की इतिहास पर लिखे उनके काफी बड़े काम से मिली थी।
जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाद में उनका ध्यान धीरे धीरे शिफ्ट हो गया इंसानी तजुर्बे के ज्यादा निजी, ज्यादा अंदरूनी पहलुओं पर।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्या हुआ,
नहीं,
बल्कि ये कि लोगों ने उस वक्त कैसा महसूस किया होगा, उनकी सोच क्या रही होगी।
एग्जैक्टली। और उनकी खासियत यही थी कि वो अलग अलग फील्ड्स को मिला देते थे, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सब कुछ।
अच्छा।
इस किताब के लिए भी उन्होंने सिर्फ पुरानी किताबें या डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, उन्होंने जीवनियां पढ़ी और तो और दुनिया भर के आम लोगों से बातचीत भी की।
ओह वाह।
हाँ, उनका मानना था कि अलग अलग दौर और कल्चर के लोगों की अंदरूनी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है।
उनका ये भी मानना था शायद कि इतिहास का असली मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि हमारी हमदर्दी, हमारी कल्पना को जगाना है।
बिल्कुल सही। इसीलिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड म्यूज फाउंडेशन भी शुरू किया था।
हाँ।
जिसका मकसद ही है लोगों के बीच बेहतर बातचीत और जुड़ाव के नए तरीके खोजना। तो एक तरह से वो इस आत्मीय इतिहास को लिखने के लिए एकदम सही इंसान थे, मतलब स्कॉलर भी और इंसानी दिल को समझने वाले भी।
ये तो दिलचस्प है। तो अब आते हैं किताब पर। ये मानवता का आत्मीय इतिहास आखिर है क्या इसमें?
ये एक बहुत बड़ी, मतलब महत्वाकांक्षी कोशिश है ये समझने की कि हमारी भावनाएं, जैसे प्यार, डर, अकेलापन है, हमारी इच्छाएं हैं, जीवन में हम जो अर्थ ढूंढते हैं, ये सब सदियों में अलग अलग कल्चर्स में कैसे इवॉल्व हुई हैं, कैसे बदली हैं।
और ज़ेल्डन का एक बड़ा आइडिया ये है, जहां तक मैं समझा हूँ, कि इतिहास कोई सीधी पटरी नहीं है जिस पर चलकर हम बस आज यहाँ तक पहुंच गए।
हाँ, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये तो संभावनाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें जीने के, महसूस करने के, रिश्ते बनाने के कई ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं।
सही कहा। वो कहते हैं कि हम एक तरह से वर्तमान की तानाशाही में जी रहे हैं।
वर्तमान की तानाशाही मतलब?
मतलब ये मानकर कि जैसा आज है वैसा ही हमेशा था या वैसा ही हो सकता है। ये किताब हमें इस सोच से, कह सकते हैं, आजाद करने की कोशिश करती है।
अच्छा।
तो ये हमें अलग अलग समय और जगहों पर ले जाती है।
हाँ, बिल्कुल।
एक तरह की टाइम मशीन समझ लीजिए। कभी आप किसी मध्ययुगीन नन की जो आध्यात्मिक उलझने थी उन्हें महसूस करते हैं, तो कभी किसी प्राचीन यूनानी दार्शनिक के दोस्ती पर क्या विचार थे वो जानते हैं, कभी रोम की एक नई दुल्हन को क्या सलाह दी जा रही थी वो पढ़ते हैं।
अच्छा।
तो कभी आज के जापान के किसी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की काम से जुड़ी चिंताएं क्या हैं उसे समझते हैं। मतलब बहुत बड़ा कैनवस है।
पर इसका मकसद कोई फॉर्मूला देना नहीं है ना, कोई प्रिस्क्रिप्शन टाइप नहीं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है इंसानी अनुभव की इतनी रिचनेस, इतनी विविधता दिखाना कि हम खुद अपने जीवन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने रिश्तों पर नए सिरे से सोचने लगें। ज़ेल्डन का मानना था कि दूसरों के निजी इतिहास को, उनकी भावनाओं के सफर को समझकर हम आज जो अकेलापन महसूस करते हैं या जो आपसी दूरियां हैं उनसे निपटने के शायद बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं।
ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात है। चलिए तो फिर कुछ मुख्य विचारों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं।
हाँ जरूर। तो ज़ेल्डन शुरुआत करते हैं उम्मीद और डर के चक्र से। वो कहते हैं कि इतिहास में ये दोनों भावनाएं लहरों की तरह आती जाती रही हैं।
अच्छा।
हमारी जो बुनियादी चिंताएं हैं जैसे अकेलेपन का डर, मौत का डर, फेलियर का डर, और हमारी जो बुनियादी उम्मीदें हैं प्यार पाने की इच्छा, सम्मान की चाहत, कोई हमें समझे, ये काफी हद तक वैसी ही है, बस उनके बाहरी रूप बदलते रहे हैं, कारण बदलते रहे हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि जहां तक ज़ेल्डन कहते हैं कि उम्मीद अक्सर सार्थक मुलाकातों से जन्म लेती है, मतलब जब हम दूसरों से सच में जुड़ते हैं गहरे लेवल पर।
हाँ बिल्कुल, जब वो कनेक्शन बनता है तो एक नई हिम्मत मिलती है। तो उम्मीद कहीं बाहर से टपकती नहीं है, वो दूसरों से जुड़ने की हमारी कैपेसिटी से पैदा होती है।
ये सोचना ही अपने आप में एक उम्मीद जगाता है, नहीं कि उम्मीद हमारे अपने हाथ में, हमारे रिश्तों में।
सही बात है। अच्छा फिर वो बात करते हैं याद रखे जाने की इच्छा की। ये भी कितनी गहरी इंसानी इच्छा है ना।
हाँ बिल्कुल।
ज़ेल्डन दिखाते हैं कि कैसे ये इच्छा हजारों सालों में बदली है। मिस्र के फिरौन जो विशाल पिरामिड बनाते थे, वहां से लेकर आज सोशल मीडिया पर हम जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं उस तक।
हाँ ये तुलना तो सोचने पर मजबूर करती है। पहले शायद लोग ईश्वर द्वारा याद रखा जाना चाहते थे या अपने कबीले, अपने छोटे से समुदाय द्वारा
शायद। हाँ
और आज हम एक बहुत बड़ी अनजान ग्लोबल भीड़ से पहचान और मान्यता चाहते हैं। ज़ेल्डन इशारा करते हैं कि क्या इसे सुकून मिलता है या और ज्यादा चिंता बढ़ती है। अक्सर ये ज्यादा बेचैनी पैदा करता है।
और इसी से जुड़ा है महत्वाकांक्षा का बदलता रूप, जिसके बारे में भी वो बात करते हैं।
हाँ
पहले शायद महत्वाकांक्षा का मतलब था ताकत हासिल करना, दूसरों पर राज करना। ज़ेल्डन कहते हैं कि धीरे धीरे ये लक्ष्य असली सम्मान पाने की ओर बढ़ा है।
अच्छा।
आज की दुनिया जो इतनी कनेक्टेड है उसमें जबरदस्ती से हासिल की गई ताकत शायद उतनी टिकाऊ नहीं है जितना कि भरोसे और प्रशंसा से मिलने वाला प्रभाव।
तो हमें ऐसी महत्वाकांक्षा की जरूरत है जो सिर्फ अपनी तरक्की न देखे बल्कि सबका भला सोचे, कुछ ऐसा।
हाँ बिल्कुल, जो व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ सामूहिक भलाई पर भी केंद्रित हो।
अब आते हैं प्यार पर। इस पर ज़ेल्डन का नजरिया मुझे बहुत ताजगी भरा लगा।
हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जिसे हम प्यार कहते हैं उसका कोई एक फिक्स्ड रूप नहीं है जो हमेशा से चला आ रहा हो।
मतलब
ये पूरी तरह से कल्चर पर डिपेंड करता है, सांस्कृतिक रूप से गढ़ा गया है। जरा सोचिए प्राचीन समाजों में जहां प्यार ज्यादातर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स का मामला था, वहां से मध्ययुगीन आध्यात्मिक प्रेम, फिर वो दरबारी इश्क, और फिर 18वीं 19वीं सदी का रोमानी प्यार, ये सब अलग अलग दौर की जरूरतें और सोच दिखाते हैं।
और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
नहीं बिल्कुल नहीं। ज़ेल्डन कहते हैं कि हम आज भी बराबरी, आपसी सम्मान और पर्सनल ग्रोथ पर आधारित प्यार के नए नए रूप घड़ रहे हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है जिसका सार ये है कि प्यार का कोई एक आइडियल रूप खोजने के बजाय इसे एक ऐसी कला के रूप में देखना चाहिए जिसका लगातार आविष्कार हो रहा है।
प्यार का इतिहास नई रेसिपीज की खोज का इतिहास है। क्या बात है,
है ना मजेदार उपमा।
हाँ हाँ, ये तो हमें अपने रिश्तों में ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की आजादी देता है। और ये बात आज कितनी रेलेवेंट है, खासकर भारत में जहां प्यार, शादी, परिवार, इन सब की पारंपरिक धारणाएं बदल रही हैं। लोग नए तरह के रिश्ते तलाश रहे हैं। ये इसी आविष्कार का हिस्सा है।
बिल्कुल। और इस आविष्कार के लिए, या कहिए किसी भी गहरे रिश्ते के लिए, सबसे जरूरी चीज क्या है ज़ेल्डन के हिसाब से? वो है सच्ची बातचीत की कला।
सच्ची बातचीत?
हाँ, वो कहते हैं कि ऐसी बातचीत जहां सिर्फ दिमाग नहीं दिल भी मिलते हो, जहां आप बिना डरे अपनी कमजोरी जाहिर कर सकें, और जहां दूसरे को समझने की सच्ची जिज्ञासा हो। ऐसी बातचीत बहुत दुर्लभ है आजकल।
हाँ ये बात थोड़ी चुभती है क्योंकि ये सच लगती है। अक्सर हमारी बातचीत या तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है या फिर बहस होती है जिसमें हमें जीतना होता है। ज़ेल्डन जिसे सच्ची बातचीत कह रहे हैं वो कुछ और है।
हाँ उन्होंने एक जगह कहा है जिसका मतलब है असली बातचीत वो है जिसमें आप इस इरादे से शामिल हों कि आप थोड़ा बदलकर बाहर निकलेंगे।
बदलकर बाहर निकलेंगे, ये कितना शक्तिशाली विचार है। बातचीत का लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि बदलना और समझना है।
बिल्कुल। और उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि इतिहास में अक्सर मर्दों और औरतों के बीच इस तरह की सच्ची बातचीत का कितना अभाव रहा है।
अच्छा।
और कैसे इस खाई को पाटने की जो धीमी लेकिन जरूरी कोशिशें हो रही हैं, वो रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। सच्ची बातचीत सिर्फ रिश्तों को नहीं, समाज को भी बदल सकती है।
रिश्तों की बात चली है तो दोस्ती की अहमियत भी ज़ेलगन के अनुसार वक्त के साथ बढ़ी है।
हाँ, काफी बढ़ी है। जैसे जैसे परिवार और समुदाय के पारंपरिक बंधन कुछ कमजोर हुए हैं या बदले हैं, दोस्ती एक तरह का निजी धर्म जैसा बन गई है।
निजी धर्म?
हाँ, या चुना हुआ परिवार, चोजन फैमिली कह लीजिए। ये वो जगह है जहाँ हम शायद सबसे ज्यादा खुलकर बिना किसी रोल के जी सकते हैं, जहाँ हमें सहारा मिलता है।
ये बात तो सही है। पहले शायद गहरी दोस्ती कुछ खास वर्गों तक ही सीमित थी।
हाँ शायद, लेकिन अब ये सबके लिए एक संभावना बन गई है। ये दिखाता है कि हम इंसानों को गहरे जुड़ाव की कितनी जरूरत है, चाहे वो पारंपरिक रिश्तों में मिले या दोस्ती जैसे नए रूपों में।
अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प विचार है, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस पर। ज़ेलगन कहते हैं कि सिर्फ बर्दाश्त करना काफी नहीं है।
क्यों? मतलब बर्दाश्त करना तो अच्छी बात मानी जाती है।
हाँ, पर वो कहते हैं कि बर्दाश्त करने में एक तरह की उदासीनता भी छिपी हो सकती है, कि ठीक है तुम जैसे हो रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये असली जुड़ाव नहीं है।
अच्छा, तो फिर असली लक्ष्य क्या होना चाहिए?
ज़ेलगन कहते हैं वो है सक्रिय जिज्ञासा,
एक्टिव क्यूरियोसिटी।
हाँ, यानी दूसरों को, खासकर उन्हें जो हमसे अलग हैं या जिनसे हमारे मतभेद हैं, उन्हें सच में समझने की इच्छा रखना, उनके नजरिए, उनके डर, उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश करना।
तो सिर्फ सह लेना नहीं, बल्कि सच में जानने की कोशिश करना।
बिल्कुल, यही डर और पूर्वाग्रह का असली इलाज है उनके अनुसार।
ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। ये हमें अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलने और दूसरों से जुड़ने की एक अलग ही तरह की आजादी देती है।
हाँ, ज़ेलगन के शब्दों का सार कुछ ऐसा है कि असली आजादी वो नहीं है कि आप जो चाहें करें, बल्कि वो है कि आप दूसरों में रुचि ले सकें, लोगों को अलग करने वाली सीमाओं को पार कर सकें।
मतलब सच्ची स्वतंत्रता दूसरों से जुड़ने में है, उनसे कटने में नहीं। वाह।
तो इस सारी बातचीत से कुछ खास बातें क्या निकल कर आ रही हैं, कुछ मुख्य संदेश?
हाँ, कई हैं। पहली तो यही कि इतिहास हमें बांधता नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक खजाना दिखाता है। हम अतीत के भूले बिसरे प्रयोगों से सीखकर आज जीने के नए और बेहतर तरीके खोज सकते हैं।
दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो है सच्ची बातचीत की ताकत। ये सिर्फ गपशप नहीं है, बल्कि रिश्तों और समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली औजार है, एक कला है जिसे हमें फिर से सीखने और संवारने की जरूरत है।
साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझकर, कोशिश करके, महसूस करने और जुड़ने के नए, ज्यादा सकारात्मक तरीके विकसित कर सकते हैं।
चौथी, हमें प्यार, परिवार, दोस्ती के जो बने बनाए ढांचे हैं उन पर सवाल उठाने से डरना नहीं चाहिए। ज्यादा सच्चे, ज्यादा बराबरी वाले, ज्यादा संतोष देने वाले रिश्ते खोजना मुमकिन है, और ये खोज लगातार जारी है।
और पांचवी, शायद इंसान की सबसे गहरी इच्छा सिर्फ ताकत या पैसा कमाना नहीं है,
बल्कि
सम्मान पाना और एक सार्थक जीवन जीना है। ऐसी जिंदगी जिसमें व्यक्तिगत तरक्की भी हो और समाज में कुछ अच्छा योगदान भी।
ये सारे विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ते हैं, है ना? खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ रिश्ते और समुदाय इतने मायने रखते हैं, वहाँ बातचीत की क्वालिटी, सम्मान की तलाश, दोस्ती के बदलते मायने, ये सब बातें बहुत प्रासंगिक लगती हैं।
बिल्कुल, ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे व्यक्तिगत चुनाव भी मिलकर इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब दिलचस्प विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? मतलब ये सिर्फ किताबी बातें ना रह जाएं।
हाँ, ये जरूरी है। जैसे रिश्तों की बात करें, ज़ेलगन की सच्ची बातचीत वाली बात को अमल में लाने की कोशिश कर सकते हैं।
कैसे?
जब किसी अपने से बात करें तो सिर्फ अपनी कहने के बजाय सच में सुनने की कोशिश करें, सवाल पूछें, समझने की कोशिश करें, और इस संभावना के लिए तैयार रहें कि शायद बातचीत के बाद आपकी सोच थोड़ी बदल जाए। अपने रिश्तों को एक कहानी की तरह देखें जिसमें हमेशा सीखने और बेहतर होने की गुंजाइश है।
और काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर,
वहां भी सफलता को सिर्फ सैलरी या पोस्ट से नापना छोड़कर ये पूछ सकते हैं, क्या मुझे यहाँ सम्मान महसूस होता है? क्या मेरा काम मेरे लिए कोई मायने रखता है? क्या ये मेरे मूल्यों से जुड़ा है? शायद ये सवाल हमें ज्यादा संतोष देने वाले करियर या काम करने के तरीके खोजने में मदद करें।
और अकेलेपन से निपटने के लिए उसके लिए क्या सुझाव हो सकता है?
ज़ेल्डन का चुने हुए परिवार का आइडिया काम आ सकता है, यानी अपनी दोस्ती में इन्वेस्ट करना, समय और भावनाएं, और अजनबियों से डरने या कतराने के बजाय थोड़ी हिम्मत करके जिज्ञासा से मिलना जुलना। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी अकेलापन कम कर सकती है।
और सहानुभूति बढ़ाने के लिए वो सक्रिय जिज्ञासा वाली बात,
हाँ वो यहाँ बहुत काम की है। कोशिश करें कि लोगों के बर्ताव के पीछे की कहानी समझें, उनके डर, उनकी उम्मीदों को। ये सिर्फ निजी रिश्तों में नहीं बल्कि समाज में जो मतभेद दिखते हैं या राजनीतिक बहसों में भी मददगार हो सकता है।
अगर हम विरोधी के नजरिए के पीछे की मानवीय भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो शायद नफरत की दीवारें कुछ कमजोर हों।
बिल्कुल। और एक और बात, आत्मचिंतन,
अपने लिए समय निकालना।
आज की भागदौड़ में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। ज़ेल्डन की किताब हमें याद दिलाती है कि अकेले बैठकर अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं को समझना भी जरूरी है। एक गहरा अंदरूनी जीवन हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा मजबूती और समझदारी से जोड़ता है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली और उम्मीद जगाने वाली बात निकली वो यही थी कि हमारी भावनाएं स्थिर नहीं हैं, वो इतिहास के साथ बदली हैं और आगे भी बदल सकती हैं।
हाँ,
ये जानकर लगता है कि हम अपने भावनात्मक जीवन के एक तरह से ड्राइवर बन सकते हैं, उसे बेहतर दिशा दे सकते हैं। हम लाचार नहीं हैं।
और मेरे लिए बातचीत की शक्ति पर जो जोर है वो बहुत अहम लगा। ये विचार कि सच्ची बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं बल्कि कुछ नया रचने, रिश्ते बदलने और यहाँ तक कि समाज बदलने की ताकत रखती है। ये एक उम्मीद है कि अगर हम संवाद की कला सीख लें तो शायद मुश्किल से मुश्किल दूरियां भी मिट सकती हैं।
तो कुल मिलाकर ज़ेरू और ज़ेल्डन हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास की जो बड़ी कहानी है वो असल में हम सब की छोटी छोटी निजी कहानियों से, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों से ही बनती है। हम सिर्फ इतिहास के दर्शक नहीं हैं, उसके हिस्सेदार हैं, उसे बनाने वाले हैं। और अतीत हमें इसके लिए सबक भी देता है और प्रेरणा भी।
हाँ, ये किताब हमें अपने और दूसरों के अंदरूनी जीवन को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा हमदर्दी से और ज्यादा जिज्ञासा से देखने का एक नजरिया देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।